देखिए भाई किताब पर फसल बिदा के फाइल इसमेस्त के पेश अजवे फेले बाशद मुस्नद बदा इसम बर तरीके क्याम फेल बदा इसम चूं जैदुन दर जराबा जैदुन व मफूल मुतलक मसदर इस्त के वाके शवद बाद अस फेले व आ मसदर बमान आ फेल बाशद चूं जर बन दर जरब तु जर बन व कियामन दर कुम तु कियामन। अफाल के अमाल के बारे में बाब जो है वो हमने शुरू किया था और इन्होंने आपको बतलाया कि हर फेल अमल करता है चाहे फेल मारूफ हो चाहे फेल मजहूल और चाहे फेल लाजिम हो और चाहे फेल मुतअद्दी हर फेल अमल करता है और फेल मारूफ हो तो वह हमेशा फाइल को रफा देता है और फेल मजहूल जो है वह नाइबुल फाइल को रफा देता है। फेल के आने के बाद सिर्फ फाइल या नाइब फाइल ही मरफू आ सकता है और कोई मरफू नहीं। लिहाजा फेल के बाद अगर किसी इसम पर आपको रफा नजर आ जाए तो साथ ही आपको फौरन यह पता चल जाना चाहिए कि यह इस फेल का फाइल है अगर यह फेल मारूफ है और अगर यह फेल मजहूल है तो यह इसका नाइबुल फाइल है। इसी तरह अगर किसी फेल के बाद किसी इसम के बारे में आपको पता चल जाए कि यह इस फेल का फाइल या नाइब फाइल है तो साथ ही आपको इस बात का भी पता चल जाता है कि इस पर रफा पड़ना है क्योंकि फाइल या नाइब फाइल मरफू होते हैं। और मैंने यह भी बतलाया आपको कि फाइल या नाइब फाइल हमेशा फेल के बाद आएगा, कभी भी फेल पर मुकदम नहीं हो सकता। और नीस फाइल या नाइब फाइल हमेशा एक ही आएगा, दो या ज्यादा नहीं हो सकते। और वो फाइल या नाइब फाइल जमीर भी हो सकती है और इसमें जाहिर भी हो सकता है। और इसमें जाहिर ये इसमें जमीर के मुकाबले में है। दुनिया के तमाम इसम आप इकट्ठे कर लें तो और उनमें से सिर्फ जमीरों को निकाल दें तो बाकी तमाम इसम जो हैं वो इसमें जाहिर हैं। इसमें जाहिर तो फेल का फाइल जमीर भी हो सकती है और इसमें जाहिर भी। इसी तरह नाइबुल फाइल भी फेल मजहूल के लिए वो जमीर भी हो सकती है और इसमें जाहिर भी, लेकिन होगा एक ही। अगर जमीर फाइल या नाइब फाइल की आ गई तो फिर इसमें जाहिर फाइल या नाइब फाइल नहीं आ सकता, और अगर इसमें जाहिर फाइल या नाइब फाइल आ गया तो फिर जमीर फाइल या नाइब फाइल नहीं आएगी क्योंकि फाइल या नाइब फाइल एक ही हो सकता है। उसके बाद जो बाकी आगे अल्फाज होंगे वो सब या मंसूब होंगे या मजरूर, और मजरूर तो दो ही हैं, एक जिस पर हर्फ जर दाखिल हो और दूसरा जो मुजाफोन इले, तो बाकी सारे मंसूब होंगे। अब उनमें आपने गौर करना है कि वो मंसूब क्यों है, क्या वो मफूल बिही है या वो मफूल मुतलक है या वो मफूल माहू है या मफूल लहू है या मफूल फी है या हाल है या तमीज है वगैरह, वो आपने फिर गौर करना है। तो फाइल या नाइब फाइल कभी फेल पर मुकदम नहीं हो सकता। तो साहिब नहमीर ने फेल मारूफ का बयान शुरू किया था और उन्होंने बतलाया कि फेल मारूफ जो है वो चाहे फेल लाजिम हो चाहे फेल मुतअद्दी वो हमेशा फाइल को रफा देगा और छह चीजों को नसब देगा। कौन कौन सी छह चीजें हैं? नंबर एक मफूल मुतलक, नंबर दो मफूल फी, नंबर तीन मफूल माहू, नंबर चार मफूल लहू, नंबर पांच हाल और नंबर छह तमीज। ये छह हैं, इनको फेले लाजिम भी नसब देता है और फेले मुतअद्दी भी। हां फेले मुतअद्दी मफूल बिही को भी नसब देता है तो वो सातवीं चीज है। तो फेले मुतअद्दी जो है वो सात चीजों को नसब दे सकता है जबकि फेले लाजिम छह चीजों को। और फिर मैंने ये भी बतलाया था कि मफूल बिही जो है वो फेले मुतअद्दी के लिए कभी एक आएगा, कभी दो और कभी तीन आएंगे। वो आगे ये खुद साहिब नहमीर भी उसको बयान करेंगे भाई। तो सबसे पहले हमने मफूल मुतलक के बारे में पढ़ा, आपने पढ़ा मफूल मुतलक वो मस्तर है जो किसी फेल के बाद आता है और वो उस फेल के माना में होता है, यानी मफूल मुतलक और फेल दोनों एक ही माना में होंगे। जैसे जरबतु जरबन, ये जरबन क्या है? मफूल मुतलक, क्योंकि ये मस्तर है और माकबल फेल जरबतु ही के माना में है। जरबतु में भी क्या बात समझ में आ रही है? जरब, और आगे मफूल मुतलक भी क्या है? जरब। तो देखो दोनों का माना एक है। जबकि दूसरा मफूल फी आपने पढ़ा, इन्होंने बतलाया कि मफूल फी वो उस जमाने या जगह का नाम है जिसके अंदर वो फेल किया जाए, और इस मफूल फी को जर्फ भी कहते हैं। और ये जर्फ फिर गोया दो किस्म पर हो गया, एक जमाना और एक मकान। तो जमाने को कहेंगे जर्फ जमान और जगह को कहेंगे जर्फ मकान। भाई मकान का माना जगह, जगह। उसके बाद आपने मफूल माहू के बारे में पढ़ा कि मफूल माहू वो है जो वाव के बाद आता है और वो वाव किस माना में होता है? मा के माना में। तो मफूल माहू वो इसम है जो वाव बमाने मा के बाद आए और ये मंसूब होता है, क्योंकि ये बहस किसकी चल रही है? मंसूबात की। अच्छा, और ये साथ के माना में, ये मुसाहबत और माइयत को बयान करता है। जा अज़ैदुन व अमरन, इसने क्या बतलाया कि जैद और अमर साथ आए हैं, इकट्ठे आए हैं। इसके बजाय अगर वावे हातिफा इस्तेमाल करें जा अज़ैदुन व अमरुन, तो इस सूरत में यह तो पता चल रहा है कि जैद भी आया है, अमर भी आया है, लेकिन यह पता नहीं चल रहा कि अलग अलग आए हैं या इकट्ठे आए हैं। लेकिन जा अज़ैदुन व अमरान, यह वह बमाने मा अगर आप ले आए तो इसका क्या माना कि दोनों इकट्ठे आए हैं, दोनों ने यह फेल इकट्ठे किया है। उसके बाद आपने मफूल लहू के बारे में पढ़ा था गुज़श्ता सबक में, इन्होंने बतलाया कि मफूल लहू वो मस्तर है जो माकबल फेल की इल्लत बयान करता है, उसकी वजह बयान करता है कि इसकी वजह क्या है इस फेल की, इसका सबब क्या है। जैसे ज़रबतु ज़ैदन तादीबन, मैंने पिटाई की जैद की, तादीबन किस लिए? अदब सिखाने के लिए। तो देखो ये जो मफूल लहू होता है ये भी मस्तर है और मफूल मुतलक वो भी मस्तर, लेकिन दोनों में फर्क क्या कि मफूल मुतलक माकबल फेल ही के माना में होता है जबकि मफूल लहू ऐसा नहीं होता, वो माकबल फेल के माना में नहीं होता बल्कि ये उससे अलग होता है और उसकी वजह और इल्लत बयान करता है। और फिर मैंने बताया था कि ये मफूल लहू जो है ये दो किस्म पर है। कितनी किस्म पर है? दो किस्म पर। कभी फेल मुकद्दम होता है और मफूल लहू मुअख्खर होता है, और कभी मफूल लहू मुकद्दम होता है और फेल मुअख्खर होता है। जैसे ज़रबतु ज़ैदन तादीबन, मैंने पिटाई की जैद की, अदब सिखाने के लिए। तो देखो यहां पिटाई पहले है और अदब का सीखना बाद में है। जो जो ज़र्ब लगती जा रही है वो अदब सीखता जा रहा है। तो ज़र्ब यानी ज़रब तु ज़ैदन तादीबन, यहां ज़र्ब पहले है और अदब का सीखना बाद में है। और कभी मफूल लहू मुकद्दम होता है और फेल मुअख्खर होता है। जैसे क़ाअद तु अनिल हर्बी जुबनन, क़ऊद का माना है बैठना, क़ाअद तु अनिल हर्बी, हर्ब जंग को कहते हैं, मैं जंग से बैठ गया यानी उसमें शिरकत नहीं की, मैं जंग में नहीं गया। जो बनान, जुबन बुजदिली को कहते हैं, जो बनान बुजदिली की वजह से, काद तो अनिल हर्बी जो बनान, मैं जंग से बैठ गया बुजदिली की वजह से। तो यहां काद तो अनिल हर्बी जो बनान, मैं जंग से बैठ गया, मैंने जंग में शिरकत नहीं की बुजदिली की वजह से। तो बुजदिली यहां पहले है और जंग से बैठना बाद में है। बात समझ में आ गई? तो मफूल लहू वो मस्तर होता है जो माकबल फेल की इल्लत बयान करता है, और कभी फेल मुकद्दम होता है और मफूल लहू मुअख्खर, जैसे ज़रबतु ज़ैदन तादीबन, और कभी मफूल लहू मुकद्दम होता है और फेल मुअख्खर, जैसे क़ाअदतु अनिल हर्बी जुबनन। उसके बाद आपने हाल के बारे में पढ़ा था, हाल वो है जो हालत बयान करता है फाइल की या मफूल की या दोनों की। जैसे जा अजैदुन राकिबन, आया जैद सवार होकर, जैद सवार होकर आया। तो देखो ये जैद यानी जो फाइल है उसकी हालत बयान कर रहा है। जा अजैदुन, ये जैदुन क्या है? फाइल। और राकिबन उससे हाल, और हाल क्या कर रहा है? फाइल की हालत बयान कर रहा है। मालूम हुआ वो पैदल नहीं आया बल्कि सवार होकर आया है। तो जा अजैदुन राकिबन, जैद सवार होकर आया। और कभी यह मफूल की हालत बयान करता है, जरबतु जैदन मशदूदन, मैंने जैद को मारा इस हाल में कि वो बांधा हुआ था। तो बा मुहावरा यूं तर्जमा कर ले, मैंने बांधे हुए जैद को मारा। और कभी यह दोनों का हाल बयान करता है, ये जो हाल होता है, लकीतु जैदन राकिबैनी, लकीतु ये ताजमीर है फाइल, और जैदन ये क्या है? मफूल भी ही। और राकिबैनी ये हाल आ रहा है, और हाल क्या होता है? मंसूब। और राकिबैन ये तस्निया है, और तस्निया का नसब किसके साथ आता है? या माकबल मफतू। रजुल की तस्निया बनाए, रजुलानी, हालत रफी में क्या कहेंगे? रजुलानी अलिफ के साथ। और हालत नस्बी जरी में कैसे कहेंगे? रजुलैनी या के साथ कहेंगे। तो यहां पर भी इसी तरह है, राकिबैनी ये या के साथ है क्योंकि ये हाल है, और हाल क्या होता है? मंसूब होता है। तो लकीतु जैदन राकिबैनी, मैंने जैद से मुलाकात की सवार होकर, इस हाल में कि हम दोनों सवार थे। तो हाल कभी फाइल की हालत बयान करता है, कभी मफूल की, और कभी दोनों की हालत बयान करता है। लकीतु जैदन राकिबैनी, मैंने और जैद ने सवार होकर मुलाकात की। देखा, मालूम है दोनों सवारी पर थे, दोनों की हालत क्या थी कि वो सवार थे मुलाकात के वक्त। उसके बाद हमने तमीज के बारे में पढ़ा। तमीज इन्होंने बताया कि तमीज इबहाम को दूर करती है। कभी कभार फेल की जो निस्बत होती है फाइल की तरफ, फेल का जो इसनाद होता है फाइल की तरफ, उस निस्बत और उस इसनाद के अंदर इबहाम होता है। तो तमीज आकर उस इबहाम और उस खिफा और उस पोशीदगी को दूर कर देती है। जैसे ताब जैदुन, जैद खुश हुआ। भाई किस एतबार से खुश हुआ? नफसन ने आकर क्या किया? इबहाम को दूर किया कि जैद अपनी जात के एतबार से खुश हुआ। तो ताब जैदुन का चाहे यह तर्जमा कर लें कि जैद खुश हुआ, ये तर्जमा कर लें जैद अच्छा है। ताब जैदुन, जैद अच्छा है। और फिर जैद अच्छा है तो फिर जरा वाजे और बात वाजे हो जाती है। ताब जैदुन, जैद अच्छा है। किस एतबार से जैद अच्छा है? अपनी जात के एतबार से अच्छा है, या अपने इलम के एतबार से अच्छा है, या बाप होने के एतबार से वो अच्छा है? तो उसके मुताबिक तमीज ले आएंगे। मसलन अगर आप कहना ये चाहते हैं कि जैद जो है अपनी जात के एतबार से अच्छा है, तो नफसन तमीज ले आएंगे। ताब जैदुन नफसन, ये नफसन क्या है? तमीज है, और ये इबहाम को दूर कर रही है। किस चीज से? वो जो ताबा की निस्बत हो रही है जैद की तरफ, तो उस निस्बत से ये तमीज है। जैद अच्छा है, किस एतबार से अच्छा है? नफसन अपनी जात के एतबार से। और अगर आप ये बतलाना चाहते हैं कि जैद बाप होने के एतबार से अच्छा है, तो बाप को अरबी में अब कहते हैं, अब। तो अब यूं कहेंगे ताब जैदुन अबन, जैद अच्छा है बाप होने के एतबार से। या अगर आप इलम के एतबार से बतलाना चाहते हैं कि जैद अच्छा है, यानी उसके पास अच्छा इलम है, तो आप कहेंगे ताब जैदुन इल्मन, कि जैद अच्छा है इलम के एतबार से। तो तमीज क्या करती है? निस्बत के अंदर जो इबहाम होता है उसको दूर करती है। और उसके बाद फिर इन्होंने आपको यह भी बताया कि फेल मुतादी जो है वह मफूल बिही को भी नसब देता है, और फेल लाजिम जो है उसमें ऐसा नहीं होता। फेल लाजिम के लिए मफूल बिही नहीं आता। यहां तक बात अच्छी तरह समझ में आ गई। अब आगे देखिए भाई, फसल बिदा के फाइल इसमें कि पेश अज फेले बाशद मुसनद बदा इसम बर तरीके कियाम फेल बदा इसम चू जैदुन दर जरा बजैदुन। भाई ये छह चीजें जो इन्होंने ऊपर बयान कर दी, मफूल मुतलक, مفعول فی، مفعول معه، مفعول له، حال اور تمیز. تمیز اس میں دو یا ہیں بھائی، دو یا، دو یا. تو یہ جو تمیز ہے نا، تمیز یہ اس میں دو یا ہیں بھائی، دو یا. اور پہلی یا کے نیچے زیر پڑھیں گے، کسرہ پڑھیں گے، تمیز، تمیز. تو یہ چھ چیزیں بتایا انہوں نے کہ چاہے فعل لازم ہو، چاہے فعل متعدی، وہ ان چھ چیزوں کو نصب دے گا. وہ ان چھ چیزوں کے نام بھی انہوں نے بتائے اور ان چھ چیزوں کی مثالیں بھی دے دیں، لیکن تفصیل کوئی نہیں بیان کی تھی کہ مفعول مطلق کسے کہتے ہیں، مفعول فی کسے کہتے ہیں، مفعول معہ کسے کہتے ہیں، مفعول له کسے کہتے ہیں، حال کسے کہتے ہیں، تمیز کسے کہتے ہیں. کوئی چیز انہوں نے بیان نہیں کی، صرف ان کے نام لیے اور ان کی مثالیں بیان کی. لیکن میں نے آپ کو ہر ایک کی تفصیل بیان کر دی، اس کی تفصیل میں نے بیان کر دی. اب آگے انہی چھ چیزوں کی وہ تفصیل بیان کریں گے اور کچھ مزید باتیں بھی اس میں ذکر کریں گے. دیکھیے بھائی، فصل بدان کے جان لے تو کہ فاعل اس میں، فاعل وہ اسم ہے کہ پیش از و فعل باشد، کہ پیش از و، پیش کا معنی پہلے، پہلے از و اس سے، کہ پیش از و فعل باشد کہ اس سے پہلے کوئی فعل ہو. بھئی میں نے بتایا تھا فاعل ہمیشہ کس کے بعد آتا ہے، فعل کے بعد آئے گا، کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہوتا. اور فاعل کیا بنتا ہے؟ مسند الیہ. اور فعل کیا ہے؟ مسند. معلوم ہوا اس فعل کا اسناد ہے کس کی طرف؟ فاعل کی طرف. اور کس طرح بتلاتے ہیں کہ یہ جو فعل ہے اس فاعل کے ساتھ قائم ہے، یہ فعل اس فاعل کے ساتھ قائم ہے. ضرب زید، توجہ ہے، ضرب زید، اس ضرب کا اسناد ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف. تو زید کیا ہوا؟ فاعل. تو دیکھو فاعل سے پہلے ہمیشہ کیا ہوگا؟ فعل ہوگا. تو دیکھو ضرب زید، زید فاعل ہے اور اس سے پہلے فعل ہے، اور اس فعل کا اسناد ہے کس کی طرف؟ زید یعنی فاعل کی طرف. اور علمی انداز میں کیا کہیں گے؟ یہ فعل اس کے ساتھ قائم ہے. ایک ہوتا ہے واقع، فعل واقع ہوتا ہے کس پر؟ مفعول بہی پر. فعل جو ہے فاعل کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور مفعول بہی پر واقع ہوتا ہے. ضرب زید عمرن، یہ ضرب کس کے ساتھ قائم؟ زید جو فاعل ہے، یہ ضرب زید کے ساتھ قائم ہے. کیا معنی قائم ہے؟ یعنی یہ اس کی صفت ہے، زید ہے تو یہ زید کی ضرب بھی ہے، زید نہ ہوتا تو زید کی ضرب بھی نہ ہوتی. عمر کی ضرب ہو سکتی تھی، بکر کی ہو سکتی ہے، خالد کی ہو سکتی ہے، لیکن زید نہیں تو پھر زید والی ضرب بھی نہیں. تو فعل جو ہے وہ فاعل کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور فعل جو ہے مفعول بہی پر واقع ہوتا ہے. توجہ ہے، کتنی باتیں ہو گئیں؟ پہلی بات کیا؟ فاعل کس کے بعد آئے گا؟ فعل کے بعد. اور فعل کا اس فاعل کی طرف اسناد ہوگا، اور فعل اس فاعل کے ساتھ قائم ہوگا، اس پر واقع نہیں ہوگا. اب وہی وہ اب یہ سب وہ بیان کریں گے. بدان کے جان لے تو کہ فاعل اسمیست، کہ فاعل وہ اسم ہے کہ پیش از و فعل باشد کہ اس سے پہلے کوئی فعل ہو، مسند، کوئی فعل ہو اس سے پہلے کوئی فعل مسند ہو، بدا اسم اس اسم کو. ضرب زید، یہ ضرب فعل مسند ہے اس اسم کو جو کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے. ضرب زید، توجہ ہے، یہ ضرب کیا ہے؟ فعل ہے، اور وہ جو زید فاعل ہے اس پر یہ مقدم ہے، اور اس فعل کا اسناد ہو رہا ہے کس کی طرف؟ اس فاعل یعنی اس اسم کی طرف جو فاعل ہے. توجہ ہے، پھر سنیں. بدان کے تو جان لے کے فاعل اسمیست، فاعل وہ اسم ہے کہ پیش از و فعل باشد کہ اس سے پہلے کوئی فعل ہو، مسند، جو کیا بن رہا ہو؟ اس سے پہلے کوئی فعل مسند ہو، بدا اسم اس اسم کو، کوئی فعل مسند ہو उस इसम को कौन सा इसम, वो जो फाइल बन रहा है उससे पहले कोई फेल हो जो मुस्नद हो उस इसम को बर तरीके कियाम, किस तरीके पर, कियाम के तरीके पर, यानी वो फेल उस फाइल के साथ कायम हो उस पर वाके न हो। ये दरअसल नाइबुल फाइल को निकालना चाहते हैं। तवज्जो है, मैंने आपको बतलाया था कि फेल मजहूल जो है उसका इस्नाद नाइबुल फाइल की तरफ होता है। फिर सुनो, जराबा जैदुन अमरन, जराबा फेल, जैदुन एराब बोलो मरफू लफजान फाइल, और अमरन मंसूब लफजान मफूल बिही, क्या है मफूल बिही। तो देखो जराबा इसका इस्नाद किसकी तरफ है, जैद फाइल की तरफ, और ये जर्ब किस पर वाके है, आमर पर, तो आमर क्या बना मफूल बिही। तो ये फेल मारूफ है। फिर इसी फेल को मजहूल बनाते हैं, जराबा से क्या बना दिया जुरेबा, और जराबा के बाद तो जैदुन फाइल था, तो जब जराबा को जुरेबा बनाया तो फाइल को हजफ कर दिया, खत्म कर दिया, तो जैदुन हुआ खत्म यहां से। अब क्या रह गया, आमर, आमरन मफूल था, उसको ले आओ फाइल की जगह पर, फेल क्या बन गया जुरिबा, और आमरन को उठाकर कहां ले आए, जैदुन फाइल की जगह पर, और फाइल मरफू था तो इस आमरन पर भी क्या पढ़ो अब, रफा पढ़ो, तो अब फाइल की जगह कौन आ गया, मफूल आ गया। तवज्जो है, फेल मजहूल आया तो फाइल की जगह कौन आ गया, मफूल, फाइल हजफ और उसकी जगह मफूल आया, और चूंकि ये किसकी जगह आया है मफूल, फाइल की जगह, इसलिए इसको नाइबुल फाइल कहते हैं कि ये उसका नाइब है, ये उसका कायम मकाम है, ये उसका खलीफा है, वो चला गया और ये आ गया, और फाइल पर तो रफा था तो अब मफूल पर भी क्या पढ़ेंगे, रफा, तो जुरीबा आमरुन, जुरीबा आमरुन। अब तरकीब कैसे होगी, जुरीबा फेल और आमरुन एराब बोलो मरफू लफजान नाइबुल फाइल। जराबा जैदुन में जैदुन था फाइल, लेकिन जुरीबा आमरुन में अमर क्या है, नाइबुल फाइल है, और ये दर हकीकत मफूल ही है, क्या है, मफूल ही है। ये जुरीबा आमरुन, ये जर्ब अमर के साथ कायम है या अमर पर वाके हो रही है, वाके हो रही है, जुरीबा आमरुन, अमर की पिटाई की गई है, जर्ब उस पर वाके हुई है। भाई बात समझ में आ गई, तो फेले मजहूल का इस्नाद नाइबुल फाइल यानी मफूल की तरफ होता है, और वो नाइबुल फाइल भी क्या होता है, मरफू। तवज्जो है, अब जरा फाइल की सिफत तारीफ इस पर लगाओ, जुरीबा आमरुन फाइल की क्या तारीफ थी, कि फाइल एक इसम होता है जिससे पहले क्या आता है, फेल। यहां पर भी देख लो, जुरीबा आमरुन, आमरुन क्या है, एक इसम है, तवज्जो है, जुरीबा एक इसम है, इससे पहले क्या है, फेल। अच्छा, फिर फाइल की तारीफ पर आओ, फाइल किसे कहते हैं, फाइल एक इसम होता है जिससे पहले क्या होता है, फेल, और इस फेल का उस इसम की तरफ इस्नाद होता है, किस तरीके पर, कि वो फेल इसके साथ कायम होता है, यानी वो फेल करने वाला है, फेल उस पर वाके नहीं। अब नाइबुल फाइल निकल गया, क्योंकि नाइबुल फाइल पर ये सारी तारीफ सादिक आ रही थी, लेकिन जब आपने कहा फेल उसके साथ कायम हो, अब नाइबुल फाइल निकल गया, क्योंकि फेल उसके साथ कायम नहीं बल्कि उस पर वाके है। देखा, जुरीबा आमरुन, इस पर सारी तारीफ सादिक आ रही है, आखिर में जब आप कहेंगे फेल उसके साथ कायम हो, वो इस पर सादिक नहीं आएगा, वो उस पर सादिक नहीं आएगा। जैसे देखो, जुरीबा आमरुन, आमरुन क्या है, एक इसम, इससे पहले क्या है, फेल, और इस फेल का इसकी तरफ इस्नाद है, किस तरीके पर, कि फेल इसके साथ कायम है या इस पर वाके है, फेल इस पर वाके है। जुरीबा आमरुन, अमर ने पिटाई की है या इसकी पिटाई हुई है, इसकी पिटाई हुई है, तो जुरीबा आमरुन, तवज्जो है, जुरीबा आमरुन, या अमर क्या है, नाइबुल फाइल, नाइबुल फाइल की भी सारी यही तारीफ है, लेकिन उसमें फेल उसके साथ कायम हो ये नहीं कहना, बल्कि कहना है फेल उस पर वाके हो। फिर सुनो फेल की तारीफ, फिर किताब पर जरा देखो, बिदा के फाइल इसमें जान ले तू के फाइल वो इसम है कि पेश अज वह फेले बाशत के उससे पहले कोई फेल हो मुस्नद जो क्या बन रहा हो मुस्नद बन रहा हो बदा इसम किसकी तरफ मुस्नद हो इसम की तरफ यानी उसकी तरफ उसका इसनाद हो रहा हो बर तरीके कियाम फेल किस तरीके पर कि वो फेल कायम हो बदा इसम उस इसम के साथ किस तरीके पर इसनाद हो रहा हो कि वो फेल उसके उस इसम के साथ कायम हो वो इसम यानी वो फाइल है तो वो फेल भी है वो इसम नहीं तो फेल भी नहीं जराबा जैदुन जैद है तो जैद की जर्ब भी है जैद नहीं तो जैद की जर्ब भी नहीं। अब जरा फेले मजहूल पे आ जाओ जुरिबा आमरुन आमरुन क्या है एक इसम है ये नाइबुल फाइल है ये नाइबुल फाइल एक इसम है इससे पहले एक फेल है और इस फेल का इस इसम की तरफ इसनाद है लेकिन कियाम के तरीके पर नहीं बल्कि वकुआ के तवाके होने के तरीके पर फर्क समझ में आया तो फाइल और नाई फाइल की तारीफ बिल्कुल एक जैसी है दोनों से पहले फेल होता है दोनों के अंदर फेल का इसनाद इनकी तरफ होता है लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि फाइल के साथ फेल कायम होता है वो इसनाद किस तरीके पर होता है क़याम के तरीके पर और नायबुल फाइल पर फेल वाक़े होता है वहां इसनाद क़याम के तरीके पर नहीं होता बल्कि वाक़े होने के तरीके पर होता है वुकुआ के तरीके पर होता है फर्क समझ में आ गया तो ये क़याम की कैद इसलिए लगाई ताकि नायबुल फाइल को निकाल दें बिदा के फाइल इसमें के पेश अज वह फेले बाशद मुस्नद बदा इसम बर तरीके कियाम फेल बदा इसम तू जान ले के फाइल वो इसम है कि उससे पहले ऐसा फेल हो जो मुस्नद हो रहा हो उस इसम को बर तरीके कियाम फेल बदा इसम उस इसम के साथ फेल के कियाम के तरीके पर उस इसम के साथ फेल के यानी फेल उसके साथ कायम हो उस पर वाक़े न हो चूं जैदुन जैसे जैदुन है दर जराबा जैदुन किस जुमले में जराबा जैद इस जराबा जैदुन के अंदर जैदुन क्या है फाइल है देखो इससे पहले फेल है और इस फेल का इसकी तरफ इसनाद हो रहा है और किस तरीके पर हो रहा है कि फेल इसके साथ कायम है वह मफूल मुतलक मस्दर एस्त और मफूल मुतलक वो मस्दर है कि वाके शवद बाद अस फेले कि जो वाके हो फेल के बाद मफूल मुतलक किसे कहते हैं वो मस्दर जो फेल के बाद आए और वो उस फेल के माना में हो यही बयान कर रहे हैं कि वह मफूल मुतलक मस्दर एस्त के वाके शवद बाद अस फेले कि मफूल मुतलक वो मस्दर है कि जो वाके हो बाद अस फेले फेल के बाद वहां मस्दर बमाने आ फेल बाशद और वो मस्दर उसी फेल के माना में होता है वो मस्दर वहां मस्दर बमाने आ फेल बाशद और वो मस्दर उसी फेल के माना में होगा चूं जरबन दर जरब तू जरबन जैसे जरबन ये मफूल मुतलक है दर जरब तू जरबन इस जुमले में जरब तू जरबन में जरबन क्या है मफूल मुतलक है देखो ये मस्दर है और किसके बाद आया फेल के बाद आया और ये उसी फेल के माना में है वकियामन दरकुम तु कियामन और जैसे कियामन ये मफूल मुतलक है दरकुम तु कियामन इस जुमले में इस कुम तु कियामन वाले जुमले में कियामन क्या है मफूल मुतलक देखो कियामन ये मस्दर है और किसके बाद आया फेल के बाद और ये उसी फेल के माना में है कुम तो उसमें भी क्या जिक्र हो रहा है कियाम और मस्दर भी आगे क्या आया कियाम तो ये मफूल मुतलक है तरकीब समझ में आ रही है जैसे तरकीब सुनो जरब तू जरबन जरब तू फेल बा फाइल मैंने बताया था कि जब फेल के साथ फाइल की जमीर मिली हुई हो जुड़ी हुई हो तो फिर आपने कहना है फेल बा फाइल उसके बाद फिर फाइल अलग करके भी बताना है तो जरब तू फेल बा फाइल ताज अमीर एराब बोलो मरफू महलन फाइल भाई मरफू महलन मरफू क्यों फाइल है और फाइल हमेशा क्या होता है मरफू महलन क्यों मबनी है। इस पर आपका कोई साथी अगर एतराज करे कि ये तो आपने मरफू महलन कहा, हालांकि ये तो मरफू लफजन है, जराब तू मैं ता के ऊपर पेश यानी जम्मा पढ़ रहा हूं, रफा पढ़ रहा हूं, ये तो मरफू लफजन है, तो जवाब में आप क्या कहेंगे जी, ये इसकी हरकत है, ये एराब नहीं है, इसकी शक्ल ही ऐसी है कि पेश के साथ इसको पढ़ते हैं, वरना तो ये जमीर है और जमीर किस में से मबनियात, और मबनी पर एराब लफ्जों में नहीं आता बल्कि महल कहते, महल का क्या माना जगह, यानी ये जगह रफे वाली है क्योंकि फाइल है और फाइल क्या होता है मरफू, तो ये मरफू महलन है। और जर बन ये एराब बोलो मंसूब लफजन, नसब पढ़ रहे हैं या नहीं, और लफजन का क्या माना कि तलफुज से ही नसब का पता चल जाए, तो ये मंसूब लफजन मफूले मुतलक, तो फेल अपने फाइल और मफूले मुतलक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। इसी तरह कुमतु कियामन, कुमतु फेल बा फाइल, इसके अंदर ताजमीर एराब बोलो मरफू महलन फाइल, और कियामन मंसूब लफजन मफूल मफूल मुतलक, फेल अपने फाइल और मफूल मुतलक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। वह मफूल फी इसमेस्त, और मफूल फी वो इसम है कि फेल मजकूर दरो वाके शवद, के मजकूरा फेल उसके अंदर वाके हो, जो फेल जिक्र किया गया हो वह उसके अंदर वाके हो। मफूल फी किसे कहते हैं, मैंने बताया था मफूल फी वो जमाना या वो जगह जिसके अंदर कोई फेल वाके हो, कोई फेल किया जाए, तो कहते हैं मफूल फी इसमें, मफूल फी वो इसम है कि फेल मजकूर दरो वाके शवाद, के मजकूरा फेल जो है यानी वो जो फेल जिक्र किया गया हो वो दरो उसके अंदर वाके शवाद वाके हो। वह ओरा जर्फ गोयंद, व ओरा जर्फ गोयन, और उसको जर्फ कहते हैं। मफूल फी का दूसरा नाम मैंने बताया था, क्या नाम है, जर्फ। व ओरा जर्फ गोयन, और मफूल फी को जर्फ कहते हैं। व जर्फ बर दो गोनास्त, और जर्फ दो किस्म पर है, गोना का क्या माना किस्म। व जर्फ बर दो गोनास्त, और जर्फ दो किस्म पर है, जर्फ जमान, एक क्या है जर्फ जमान, नाम से ही पता चल रहा है ये जमाने का नाम होगा, ये जमाना होगा, और जर्फ मकान वो जगह। तो कहते हैं नंबर एक जो है जर्फ जमान, चू यौम दर सुम तु यौमल जुमाती, जैसे यौम का लफ्ज है दर सुम तु यौमल जुमाती, सुम तु यौमल जुमाती, इसमें जो इसमें ये जो यौम का लफ्ज है ये जर्फ जमान है। यौमल जुमा जगह का नाम है या जमाने का नाम है, जमाने का नाम है, तो यौम क्या है यहां पर मफूल फी है, यानी जरफे जमान है, और मफूल फी क्या होता है मंसूब, इसीलिए यौम अल जुमाती पड़ा, और यौम है मुजाफ और अल जुमाती है मुजाफुन इले, और मुजाफ इले पर हमेशा कौन सा इराब आता है जर, इसीलिए अल जुमा पर जर आप पढ़ रहे हैं, और अल जुमाती पर कौन सा जर है लफजन तकदीरन या महलन, लफजन है, लफ्जों में नजर हम पढ़ रहे हैं यौम अल जुमाती। व जर्फ मकान, और दूसरी किस्म क्या है जर्फ मकान, चू इंदा, जैसे इंदा का लफ्ज है दर जलस तो इंदा का, जलस तो इंदा का, अच्छा सुम तो यौमल जुमाती, तर्जमा क्या होगा मैंने रोजा रखा, सामा या सुमू का माना रोजा रखना, सुम तो यौमल जुमाती मैंने रोजा रखा जुमे के दिन, अच्छा हां, और पीछे जो आया था जरब तो जरबन, उसका क्या तर्जमा करेंगे जरब तो जरबन, मैंने पिटाई की, तुलबा तर्जमा यूं करते हैं जरब तो मैंने पिटाई की, जरबन पिटाई करना, मैंने पिटाई की पिटाई करना, नहीं भाई ये मफूले मुतलक का अलग तर्जमा नहीं करते, तो जरब तो जरबन का तर्जमा करेंगे कि मैंने पिटाई की, या यूं तर्जमा कर लें मजाज के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए अगर ये हो तो जरब तो जरबन मैंने वाकई पिटाई की, ताकि कोई ये ना समझे जरब से डांटना वगैरह मुराद है, तो मफूल मुतलक आप आगे ले आए, जरब तो जरबन, क्या बतलाया कि जरब से जरब ही मुराद है, डांटना वगैरह मुराद नहीं, तो जरब तो जरबन क्या तर्जमा करेंगे, मैंने वाकई पिटाई की। और कुम तो कियामन, इसका क्या तर्जमा करेंगे, मैं वाकई खड़ा हुआ। और सुम तो यौमल जुमाती, मैंने जुमे के दिन रोजा रखा। तो देखो ये जुमे का दिन ये जर्फ है आपके रोजे के लिए, आपने इस जमाने में इस जमाने के अंदर रोजा रखा है, तो जर्फ भी किसे कहते हैं, वो जमाना या जगह जिसके अंदर कोई फेल किया जाए। मालूम हुआ आपने रोजा किस जमाने में रखा, जुमे के दिन में, तो ये इसलिए मफूल फी है भाई, जर्फ जमान है। व जर्फ मकान, और दूसरा क्या है, जर्फ मकान, चूं ईंदा, जैसे ईंदा का लफ्ज है दर जलस तो ईंदा का, इस जुमले में जलस तो ईंदा का, जलस तो मैं बैठा, ईंदा का आपके पास, जलस तो ईंदा का मैं बैठा आपके पास। देखो पास होना ये जगह है, मैं आपके पास बैठा या आपसे दूर बैठा या आपके दाएं बैठा बाएं बैठा आगे बैठा पीछे बैठा, बात समझ में आ रही है, या ऊंची जगह पर बैठा या नीचे बैठा, ये सब क्या है, ये सब जगह हैं। तो ईंदा ये क्या है, जगह है, ये जर्फ मकान है, जर्फ मकान है, तवज्जो है। और जर्फ मकान, जब ये जर्फ मकान है तो जर्फ मकान पर क्या इराब होता है, नसब, इसीलिए ईंदा का ये मंसूब है, बात समझ में आ गई, तो ये इसलिए मंसूब है। जलस तो ईंदा का मैं बैठा आपके पास, तर्जमा कीजिए भाई, नहीं पहले तरकीब कीजिए, सुम तो यौमल जुमाती, सुम तो फेल बफाइल, इसके अंदर ताज अमीर एराब बोलो, मरफू महलन फाइल, मरफू क्यों, फाइल है, और फाइल हमेशा क्या होता है, मरफू, महलन क्यों कहा, लफ्जन क्यों नहीं कहते, क्योंकि जमीर है, और जमीर किस में से है, मबनियात, और मबनियात पर एराब महलन आता है, लफ्जन नहीं। लफ्जन तो वो 16 किस्में पढ़िया थी आपने, 16 किस्में मौरब की, कि एराब के एतबार से वो 16 किस्म पर है, उनमें किसी में लफ्जन एराब है और किसी में तकदीरन। लफ्जन का क्या माना, कि बाकायदा तलफ्फुज़ से ही एराब का पता चल जाए, तो वो 16 किस्में आपको कुल हुवल्लाह की तरह याद होनी चाहिए भाई, वो बुनियाद है सारी नहव की। तो ताज अमीर मरफू महल्लान, फिर सुनो, सुम तो फेल बा फाइल, ताज अमीर मरफू महल्लान फाइल, यौमल जुमाती, यौमा एराब बोलो मनसूब लफजन, यौमा देखो नसब तलफू से पता चल रहा है या नहीं, तो ये मनसूब है लफ्ज, यौमा यौमु यौमी, देखो इजाफत के साथ होता, वैसे तो इस पर तनवीन आती है अगर इजाफत ना होती, यौमुन यौमन यौमिन, लेकिन आगे चूंकि मुजाफिले आ रहा है अलजुमा, और मुजाफिले की वजह से तनवीन गिर जाती है, तो यौमा एराब बोलो मनसूब लफजन, मनसूब क्यों, मफूल फी है, मफूल फी क्या होता है, मनसूब, और लफजन क्यों, इसके नसब पर हम तलफुज कर रहे हैं, और अलजुमाती मजरूर लफजन, तो यूं कहेंगे यौमा मनसूब लफजन मुजाफ, और अलजुमाती मजरूर लफजन मुजाफिले, मजरूर क्यों, मुजाफिले है, लफजन क्यों, इसके जर पर हम तलफुज कर रहे हैं, करके दिखाओ, अलजुमाती नसब पर जरा तलफुज करो, अलजुमाता रफा पर तलफुज करो, अलजुमातु, तरीका समझ में आया, तो ये मुजाफिले हुआ, मुजाफ अपने मुजाफिले से मिलकर ये मफूल फी हुआ सुम तु फेल के लिए, फेल अपने फाइल और मफूल फी से मिलकर जुमला फिअलिया खबरिया हुआ, सुम तु यौमल जुमाती, मैंने जुम्मे के दिन रोजा रखा, ये यूं कहें मैंने जुम्मे के दिन में रोजा रखा। दूसरी तरकीब कीजिए, जलस तु इंदा का, जलस तो फेल बा फाइल, ताज अमीर मरफू महलन फाइल, और ईंदा का इसमें ईंदा एराब बोलो منصوب لفظان مضاف. منصوب کیوں؟ مفعول فی ہے. مفعول فی منصوب ہوتا ہے. منصوب کیوں؟ مفعول فی. لفظن کیوں؟ اس کے نصب پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. تو منصوب لفظن مضاف. اور کاف ضمیر مجرور محلن مضافل ہے. مجرور کیوں؟ مضافلے ہے. مضافلے کیا ہوتا ہے؟ مجرور. مجرور دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک مضافلے اور ایک جس پر حرف جر داخل ہو. پھر ایک اور بات یاد رکھنا، جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے تو وہ آپس میں مضافلے بنیں گے. توجہ ہے؟ جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے. اسم کی بات کر رہا ہوں، فعل نہیں. فعل کے ساتھ تو ضمیریں جڑتی رہتی ہیں. ضربتو یہ تا فاعل کی ضمیر ہے، ضربتہ یہ تا فاعل کی ضمیر ہے، اور ہا جو ہے وہ مفعول کی ضمیر ہے. بات کر رہا ہوں اسم. اسم کے ساتھ جب ضمیر متصل آ جائے، عیندہ کا یہ کاف کیا ہے؟ عیندہ کے ساتھ متصل ہے. اور عیندہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے بھائی، اسم ہے. تو جب بھی اسم کے ساتھ کیا آ جائے؟ ضمیر متصل، تو وہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ مضاف مضافل ہے. تو عیندہ منصوب لفظان مضاف، کاف ضمیر مجرور محلن مضافن الے. مجرور کیوں؟ مضافلے ہے. محلن کیوں؟ مبنی ہے، ضمیر ہے. مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مفعول فی ہوا. کس کے لیے؟ جلستو فعل کے لیے. فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آگے دیکھیے بھائی، وہ مفعول معہو اسمیست کہ مذکور باشد بعد از واو بمانے معا. اور مفعول معہو وہ اسم ہے، مفعول معہو اسمیست، مفعول معہو وہ اسم ہے کہ مذکور باشد بعد از واو بمانے معا، کہ جو مذکور ہو واو بمانے معا کے بعد. بعد از واو بمانے معا، واو بمانے معا کے، یعنی واو بمانے معا کے بعد جو مذکور ہو وہ ہے مفعول معہو. چوں والجباتی، جیسے کہ والجباتی ہے، در جا البرد والجباتی اس جملے میں، جا البرد والجباتی جیسے اس جملے میں. والجباتی یہ کیا ہے؟ مفعول معہو ہے، کیونکہ یہ الجبات، تو یہ الجبات جو ہے یہ مفعول معہو ہے، کیونکہ یہ کس کے بعد ہے؟ واو بمانے معا کے بعد. جا البرد والجباتی ای مع الجباتی. دیکھو والجبات کا معنی بیان کیا کہ والجبات کس معنی میں ہے؟ مع الجبات، یعنی یہ واو معا کے معنی میں ہے. اس واو کا معنی ہے معا، یعنی ساتھ ساتھ. جی، برد کسے کہتے ہیں؟ سردی کو. اور جبات جبوں، یہ جبا کی جمع ہے، اور یہ گرم لباس عرب استعمال کرتے تھے. تو جا البرد والجباتی، سردی آئی جبوں کے ساتھ. یوں ترجمہ کر لیں، سردی گرم کپڑوں کے ساتھ آئی، یعنی سردی آتے ہی لوگوں نے گرم کپڑے پہننا شروع کر دیے. ترکیب کیجئے، جا فعل، البرد مرفوع لفظان فاعل. مرفوع کیوں؟ فائل ہے. لفظن کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. یہ واو بمانے معا. الجباتی اعراب بولو، پھر مجرور کہہ رہے ہو یہ زیر کو دیکھ کر. یہ جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث سالم کا نصب آتا ہی کس کے ساتھ ہے؟ جر کی صورت میں، یعنی کسرہ کے ساتھ آتا ہے. اور یہ منصوب ہے، کیونکہ کس کی بات چل رہی ہے؟ مفعول معہو کی. اور مفعول معہو منصوب ہوتا ہے. ابھی انہوں نے اوپر آپ کو بتایا تھا کہ فعل چھ چیزوں کو نصب دیتا ہے، ان میں سے ایک مفعول معہو ہے. تو الجباتی اعراب بولو، منصوب منصوب لفظان مفعول معہو. منصوب کیوں؟ کیونکہ مفعول معہو ہے. لفظن کیوں؟ اس کے نصب پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. پوری بات کیا کریں، یہ لفظ ہے اور لفظ پر تو ہوتا ہی تلفظ ہے. یوں کہ اس کے نصب پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ کر رہے ہیں. کر کے دکھاؤ، अल जुब्बाती, ये तो आप जर पढ़ रहे हैं जी, आप कहेंगे जर नहीं है, ये क्या है नसब, इसका नसब आता ही किस तरह कसरा के साथ है, यानी जर जैसी सूरत है लेकिन ये जर नहीं है, तो ये मंसूब लफ्जन है। तो फेल अपने फाइल और मफूल माजू से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। वह मफूल लहू इसमें के दलालत कुनत बर चीजे के सबब फेले मजकूर बाशद, और मफूल लहू, मफूल लहू किसे कहते थे जो माकबल फेल की इल्लत और वजह और सबब बयान करे, वही बयान कर रहे हैं। वह मफूल लहू इसमें, और मफूल लहू वो इसम है कि दलालत कुनत बर चीज है, कि जो दलालत करे ऐसी चीज पर कि सबब फेल मजकूर बाशद, कि वो फेल मजकूर का सबब हो। जरब तो हूं तादीबन, ये तादीबन क्या बतला रहा है, माकबल फेल की इल्लत बयान कर रहा है। कात तो अनिल हर भी जुबनन, ये जुबनन क्या कर रहा है, माकबल फेल की इल्लत बयान कर रहा है, उसकी वजह और सबब बयान कर रहा है। तर्जमा समझ में आया, फिर सुनो। वह मफूल लहू इसमें, और मफूल लहू वो इसम है कि दलालत कुनत बर चीजे, कि जो दलालत करे ऐसी चीज पर कि सबब फेले मजकूर बाशद, जो फेले मजकूर का सबब हो, उसकी इल्लत हो, उसकी वजह हो। चूं इकरामन, जैसे कि इकरामन है, दर कुम तो इकरामन ले जैदीन, इस जुमले में कुम तो इकरामन ले जैदीन जुमले में जैसे इकरामन, ये मफूल लहू है। कुम तो इकरामन ले जैदीन, तर्जमा करें, मैं खड़ा हुआ इकरामन ले जैदीन, जैद का इकराम करने के लिए। जी तरकीब कीजिए, कुम तो फेल बाफाइल, ताज अमीर मरफू महलन, मरफू क्यों, फाइल है और फाइल हमेशा मरफू होता है, महलन क्यों, मबनी है। अगर कोई कहे ये ताज अमीर तौर पर तो रफा में पढ़ रहा हूं, आप तो आप क्या जवाब में कहेंगे, ये इसकी हरकत है, ये एराब नहीं है। इकरामन ये मनसूब लफजान मफूल लहू है, तो ये मनसूब, अभी मनफूल लहू ना कहें, अभी इसको आगे जोड़ना है। तो इकरामन मनसूब लफजान मसदर, मनसूब लफजान मसदर, ले जैदीन लाम जारा, जैदीन मजरूर लफजन, मजरूर क्यों, क्योंकि इस पर हरफ जर दाखिल है, और हरफ जर क्या करता है, जर देता है, और लफजन क्यों, इसके जर पर हम क्या कर रहे हैं, पूरी बात करें, इसके जर पर हम तलफुज कर रहे हैं। वैसे तो जैद लफ्ज है और हर लफ्ज पर क्या होता है तलफुज, लेकिन यहां लफ्ज की बात नहीं हो रही बल्कि एराब की बात, के एराब पर भी हम तलफुज कर रहे हैं। जैदीन, देखो इस जर पर मैंने क्या किया, तलफुज। तो जार मजरूर मिलकर ये मुतअल्लिक होंगे इकरामन मस्तर के साथ, ये किससे मुतअल्लिक, इकरामन मस्तर से, और इकराम मस्तर ये अपने मुतअल्लिक से मिलकर ये मफूल लहू हुआ, किसके लिए, कुमतु के लिए। कुमतु फेल अपने फाइल और मफूल लहू से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। आगे देखिए, वहाल इसमें नकेरा के दलालत कुनत बर हैअत फाइल, मैंने क्या बतलाया था कि हाल किसे कहते हैं, जो फाइल या मफूल की हालत बयान करे या दोनों की हालत बयान करे, और इसमें यह भी ये बतलाएंगे कि हाल नकेरा होता है, हाल क्या होता है, जा अजैदुन राकिबन, ये राकिबन ये मारिफा है या नकेरा है जी, तो लबा सोच में पड़ जाते हैं कि ये मारिफा या नकेरा, भाई वो मारिफा की छह किस्में, सात किस्में जहन में रखो, हर जगह पर सात किस्में याद हैं भाई, कौन सी, नंबर एक मारिफा की सात किस्में, नंबर एक तमाम जमीरें, नंबर दो आलम, नंबर तीन अस्माए इशारा, नंबर चार अस्माए मौसूला, नंबर पांच मारिफा बन निदा, नंबर छह मुआर्रफ बिल लाम, यानी मारिफा ब अलिफ लाम कह लें, जिस पर क्या हो, अलिफ लाम हो, और सातवां जो इन में से किसी एक کی طرف مضاف ہو یعنی معرفہ بنیدا کے علاوہ جو باقی پانچ پہلے شروع میں آئے ان کی طرف جو مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ. تو یہ سات قسمیں ہیں. توجہ ہے, پھر دہرائیں, معرفہ کی کتنی قسمیں؟ سات. نمبر ایک تمام ضمیریں, نمبر دو علم, علم ترتیب بھی یاد رکھیں, نمبر ایک تمام ضمیریں, نمبر دو عالم, نمبر تین اسماء اشارہ, نمبر چار اسماء موصولہ, نمبر پانچ معرفہ بن ندا, نمبر چھ معرف باللام یا معرفہ بالف لام, اور نمبر سات جو ان پہلے جو ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو علاوہ معرفہ بن ندا کے. تو دیکھو اب یہ قسمیں ہیں معرفہ کی, یہ ہر وقت آپ کو یاد ہونی چاہیے. اب راکبن پر آ جاؤ, یہ آپ کو بتلائیں گے کہ حال نکرہ ہوتا ہے. جا زیدن راکبن, آیا زید سوار ہو کر, تو یہ راکبن یہ حال ہے, اور حال کیا ہوتا ہے؟ نکرہ. اب یہ راکبن نکرہ ہے یا نہیں آپ خود غور کر لیں. طلبا میں نے بتلایا سوچ میں ڈوب جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ معرفہ ہے یا یہ نکرہ. بھائی معرفہ کی قسمیں یاد رکھیں اور پھر اس پر لگا کر دیکھیں. راکبن یہ ضمیر ہے؟ نہیں. یہ علم کسی کا نام ہے؟ نہیں. اچھا یہ اس میں اشارہ ہے؟ اس میں اشارہ بھی نہیں. اچھا اس میں موصول ہے؟ نہیں وہ بھی نہیں ہے. کیا یہ معرفہ بنیدا ہے, اس پر کوئی حرف ندا داخل ہو رہا ہے؟ نہیں یہ وہ بھی نہیں ہے. کیا یہ معرف باللام ہے, اس پر الف لام ہے؟ الف لام بھی نہیں ہے. کیا یہ ان میں سے کسی کی طرح مضاف ہو رہا ہے, آگے کوئی مضاف الیہ ہے؟ نہیں. دیکھا ایک ایک چیز لگاتے جائیں. پھر سنیں راکبن کیا ہے؟ نکرہ. تو لبا کو پتا نہیں چلتا کسی لفظ کا کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ, تو اس پر معرفہ کی ایک ایک قسم لاگو کر کے اور غور کر کے دیکھا کریں. یہ راکبن یہ ضمیر ہے؟
نہیں.
کیا یہ علم ہے, کسی کا نام ہے؟
نہیں.
کیا یہ اس میں اشارہ ہے ہاذا یا ہا اولائی وغیرہ یا ذالک؟ نہیں اس میں اشارہ بھی نہیں. کیا یہ اس میں موصول ہے الذی اللذانی وغیرہ؟ نہیں. کیا یہ معرفہ بنیدا ہے, اس پر حرف ندا کوئی داخل ہو رہا ہے؟
نہیں.
کیا یہ معرف باللام ہے, اس پر الف لام داخل ہے؟
نہیں.
راکبان پر کوئی الف لام نہیں. کیا یہ ان میں سے کسی کی طرف مضاف ہو رہا ہے؟ کیا اس راکبان کے آگے کوئی مضاف الیہ آ رہا ہے؟
نہیں.
اس کے آگے کوئی مضاف الیہ بھی نہیں. تو معلوم ہوا یہ معرفہ کی سات قسموں میں سے نہیں. جب ان میں سے نہیں ہے تو معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. اس طرح معرفہ کی قسم ایک کسی لفظ پر فوراً لاگو کر کے دیکھا کریں کہ یہ ان میں سے کوئی قسم ہے یا نہیں. تھوڑی سی مشق کریں گے, یعنی کہ آپ کو ہمیشہ اس طرح کرنا پڑے گا, نہیں نہیں, یہ کچھ عرصہ آپ چند دن ہی مشق کریں گے, آپ کو ایسی عادت ہو جائے گی لفظ کو دیکھتے ہی آپ بتا دیا کریں گے کہ یہ معرفہ ہے یا یہ نکرہ ہے. لیکن شروع میں چند دن اس طرح کریں آپ کو عادت ہو جائے گی. پھر تو یہ کیا بتلائیں گے کہ حال کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. نکرہ وہی بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں دیکھیے بھائی وہ حال اسم است نکرہ, اور حال وہ نکرہ اسم ہے. وہ حال اسم است نکرہ, اور حال وہ نکرہ اسم ہے کہ دلالت کنت بر حیعت فاعل, جو دلالت کرے فاعل کی حیعت پر. حیعت کا معنی حالت, حالت. تو جو دلالت کرے بر حیعت فاعل, فاعل کی
حالت پر,
جو دلالت کرے بر حیعت فاعل, فاعل کی حالت پر. چون راکبن, جیسے کہ راکبن ہے یہ حال ہے. درجہ زید راکبن, اس جملے میں جا زید راکبن میں راکبن کیا ہے؟ حال ہے. اور یہ دیکھو نکرہ ہے, اور یہ فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے. جا زید راکبن, آیا زید سوار ہو کر, یا یوں کہہ لیں زید سوار ہو کر آیا. جی ترکیب کیجئے, جا فعل, زیدن مرفوع لفظان فاعل ہے, اور لیکن ابھی فاعل نہ بناؤ, ابھی اس کو ذوالحال بنا دو. یاد رکھو جس چیز جب حال آئے تو جس چیز کی وہ حالت بیان کرے اس کو ذوالحال کہتے ہیں. ذوالحال, ذو مال کا کیا معنی؟ مال والا. ذو مال, مال والا. تو ذوالحال کیا معنی؟ हाल वाला, यानी जिसका आगे हाल आ रहा हो। तो यहां पर हाल किसका आ रहा है? फाइल का। तो जैदुन इसमें कहो ये जुलहाल है। ये क्या है? जुलहाल है। तो यूं तरकीब दोबारा सुनो, जा फेल जैदुन मरफू लफजान जुलहाल बन, ये है तो फाइल ही, लेकिन अभी फाइल ना कहो, है फाइल ही। इस पर रफा क्यों पढ़ रहे हैं? फाइल है, और फाइल क्या होता है? मरफू। और लफजन क्यों कहा? इसके रफा पर हम तलफुज कर रहे हैं, तो मरफू लफजन जुलहाल। जुलहाल मैंने क्यों कहा? क्योंकि आगे मैंने हाल को इसके साथ जोड़ना है, वरना अगर यहां ये है फाइल ही, आप वैसे कह दें जैदुन मरफू लफजन फाइल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये फाइल है, लेकिन हाल को जोड़ लो फिर उसके बाद फाइल बताओ। तो जैदुन मरफू लफजन जुलहाल। मरफू क्यों? फाइल है। लफजन क्यों? इसके रफा पर हम तलफुज कर रहे हैं। आगे आइए, राकिबन मंसूब लफजान हाल, मंसूब लफ्ज। इसके अंदर भी हम जमीर निकालेंगे, लेकिन बहरहाल अभी आपकी इब्तिदा में बस इतना याद रखें, यह राकिबन क्या है? हाल। और हाल पर कौन सा इराब आता है? नसब आता है, यह मंसूब होता है। तो राकिबन मंसूब लफ्जन। मंसूब क्यों? हाल है। मंसूब क्यों? हाल है। तो मंसूब लफ्जन। और लफ्जन क्यों? इसके नसब पर हम तलफुज कर रहे हैं। तो मंसूब लफ्जन हाल। किससे हाल? किसकी हालत बयान कर रहा है? जैद की। तो जैद जुलहाल अपने हाल से मिलकर यह फाइल हुआ, किसके लिए? जा के लिए। फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। बात समझ में आ गई? ये हमारे यहां इस तरह तरकीब करते हैं कि पहले जुलहाल बनाते हैं, फिर आगे हाल को भी उससे जोड़ते हैं। अरब के यहां इस तरह तरीका नहीं है। अरब से पूछें तरकीब क्या है, वो सीधा कहेगा जा फेल है, जैदुन मरफूफ लफजन है, क्योंकि ये क्या है? फाइल है। और राकिबन क्या है? मनसूब लफजन है, ये हाल है बस। और फिर ये क्या बन गया? जुमला फेलिया खबरिया हुआ। तरीका समझ में आया? तो लिहाजा आपने परेशान नहीं होना कि जैदुन के साथ राकिबन को जोड़ना है फिर उसको फाइल बनाना है, नहीं। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जैदुन पर मैंने रफा क्यों पढ़ा? कि फाइल है। और राकिबन पर मैंने नसब क्यों पढ़ा? क्योंकि हाल है। और किससे हाल है यह भी पता होना चाहिए कि ये फाइल जैद यानी फाइल से हाल बन रहा है। तो इन्होंने क्या बताया कि वह हाल इसमें इस तरह नकेरा के दलालत पुनत बर है अत फाइल के। हाल वो नकेरा इसम है कि जो दलालत करता है फाइल की हालत पर। चूं रा की बन, जैसे कि रा की बन यह हाल है, दर्जा अजैदुन रा की बन इस जुमले के अंदर, या बर है अत मफूल, या वो इसमें नकेरा के जो दलालत करता हो मफूल की हालत पर। बर है अत बर है अत मफूल यानी मफूल की हालत पर, जिसका आतफ पीछे जो आया था ना बर है अत फाइल, बर है अत फाइल, उसकी जगह ये अब आ गया कि जो दलालत करता है मफूल, या वो दलालत करता है मफूल की हालत पर। चूं मशदूदन, जैसे कि मशदूदन ये हाल है और मफूल की हालत बतला रहा है। दर जरब तु जैदन मशदूदन इस जुमले में, जरब तो जैदन मशदूदन, तरकीब कीजिए, जरब तो फेल बाफाइल ताजमीर नरफो महल्लान फाइल, जैदन मंसूब लफजान जुलहाल है। वैसे अच्छा, तो जुलहाल मंसूब क्यों? जैदन मंसूब क्यों? ओहो, जुलहाल मंसूब नहीं होता। जुलहाल तो पीछे जैदुन भी आया था, वो मंसूब था नहीं। जुलहाल सिर्फ इतना बताता है कि इससे आगे हाल आ रहा है। जुलहाल कहने से एराब का पता नहीं चलता। मैंने कहा कि जैद जुलहाल है, तवज्जो है जी। या मैं कहता हूं अमर जुलहाल है, क्या आपको जुलहाल के एराब का पता चला? या और छोड़ो, ये जुमले छोड़ दो। मैंने कहा भाई मैं एक जुमला आपके सामने जिक्र करूंगा, उसमें खालिद जुलहाल बनेगा। तवज्जो है, मैं एक जुमला आपके सामने जिक्र करूंगा, उसमें खालिद क्या बनेगा? एराब का पता चला आपको?
नहीं।
खालिद पर क्या एराब आएगा?
नहीं
पता चला, क्योंकि जुलहाल का एराब रफा नसब जर कोई तय नहीं है। वो मरफू भी हो सकता है, मनसूब भी और हां अब मैं एक और लफ्ज बोलूंगा, आप देखो मैं एक जुमला आपके सामने बोलूंगा उसमें खालिद फाइल बनेगा, एराब का पता चला
जी,
क्या पता चला? मरफाल फाइल हमेशा क्या होता है? मरफू होता है। देखा दो बातें मैंने एक जैसे की, एक में आपको एराब का पता चल रहा है, एक में एराब का पता नहीं चल रहा। मैंने क्या कहा? मैं एक जुमला आपके सामने जिक्र करूंगा उसमें खालिद फाइल बनेगा। आपको खालिद के एराब का पता चला क्या? मरफू। क्यों मरफू? क्योंकि फाइल मरफू होता है। तो देखा फाइल के एराब का, तो फाइल कहो तो एराब का पता चलता है। अब मैं दूसरा जुमला बोलता हूं, मैं आपके सामने एक जुमला बोलूंगा उसमें खालिद जुलहाल बनेगा, एराब का पता चला?
नहीं,
जुलहाल से एराब का पता नहीं चलता, फाइल कहने से एराब का पता चलता है। दूसरी मिसाल ले लो, मैं आपके एक सामने एक जुमला जिक्र करूंगा उसमें जैद मुबतदा बनेगा, एराब का पता चला क्या? मुबतदा क्या होता है? देखा मरफू होता है, आपको एराब का पता चल गया। मैं एक और जुमला बोलता हूं, मसलन मैं आपके सामने एक जुमला जिक्र करूंगा उसमें रजुल का लफ्ज खबर बनेगा, रजुल का लफ्ज एराब का पता चला क्या? शाबाश, क्योंकि खबर क्या होती है? मरफू। आप पढ़ चुके मुब्तदा भी मरफू, खबर भी मरफू और फाइल भी मरफू। एक और जुमला मैं बोलता हूं, मैं आपके सामने एक जुमला जिक्र करूंगा उसमें बकर नायबुल फाइल बनेगा, उसमें बकर एराब का पता चला क्या? मरफू। शाबाश, बात समझ में आ गई। तो बस बास चीजें वो हैं, ये नहव की किताबों में जिक्र करते हैं, ये चीजें मरफूआत जिक्र करते हैं, फिर मनसूबात जिक्र करते हैं, फिर मजरूरात। वो मरफूआत में से कोई नाम लेंगे तो आपको एराब का पता चल जाएगा कि रफा पढ़ना है। जैसे कह दिया फाइल, पता चल गया क्या पढ़ना है? रफा। नायबुल फाइल, पता चला क्या पढ़ना है? रफा। यह कह दिया मुबतदा, क्या पता चला? रफा। या बताया ये खबर है, क्या पता चला? रफा। और अगर मैं कहूं मैं एक जुमला आपके सामने एक जिक्र करूंगा उसमें खालिद मफूल बिही बनेगा, एराब का पता चला क्या? शाबाश, तरीका समझ में आया। तो जुलहाल कहने से एराब का पता नहीं चलता, लेकिन फाइल या मफूल कहने से एराब का पता चल जाता है। अच्छा, हम तरकीब कर रहे थे, ज़रबतु ज़ैदन मशदूदन, ज़रबतु फेल बा फाइल, ता ज़मीर मरफू महलन फाइल, मरफू क्यों? फाइल है। महलन क्यों? मबनी है। ज़ैदन एराब बोलो, मंसूब लफ्जन, ये मफूल बिही है, और लेकिन आगे इसने इससे हाल भी आ रहा है। तो हमारे यहां फिर तरकीब में यह राइज है कि पहले जुलहाल बनाते हैं इसको। तो हाँ, तो ज़ैदन मंसूब लफ्जन, मंसूब क्यों? मफूल बिही है। लफ्जन क्यों? इसके नसब पर हम तलफुज कर रहे हैं। तो ज़ैदन मंसूब लफ्जन मफूल बिही, ओह मंसूब लफ्जन जुलहाल है, मफूल बिही ही, क्योंकि नसब क्यों पढ़ रहे हैं आप? मफूल बिही, लेकिन अभी जुलहाल कहें ताकि आगे हाल को भी हम इससे जोड़ दें। आगे मशदूदन एराब बोलो, मंसूब लफ्जन, मंसूब क्यों? हाल है, और हाल क्या होता है? मंसूब। और लफ्जन क्यों? नसब पर हम तलफुज करें, करके दिखाओ। मशदूदन रफा पर करो, मशदूदन जर पर करो, मशदूदन। मालूम हुआ अगर कोई रफा का मकाम होता तो आप मशदूदन पढ़ते, ये नसब का मकाम है तो आप मशदूदन पढ़ रहे हैं, और अगर इस पर कोई हरफे जर दाखिल होता तो आप क्या पढ़ते? मशदूदन। मालूम हुआ इस पर तीनों तरह के एराब लफ्जन आते हैं, यानी तलफुज से ही पता चल जाता है। तो मशदूदन मंसूब लफ्जन हाल, किससे हाल है? ज़ैदन, और ज़ैदन फाइल है या मफूल है? मफूल है। तो देखो ये मफूल के हाल को बयान कर रहा है। तो ज़ैदन जुलहाल अपने हाल से मिलकर मफूल बिही हुआ फेल के लिए, फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। ज़रबतु ज़ैदन मशदूदन, मैंने ज़ैद की पिटाई की इस हाल में कि वो बांधा हुआ था, या बा मुहावरा तर्जमा कर लें, मैंने बांधे गए जैद की पिटाई की या बांधे हुए जैद की पिटाई की। तरीका समझ में आ गया। इन्होंने क्या कहा कि वह हाल इसमें नकेरा के दलालत कुनत बर हैअत फाइल या बर हैअत मफूल। हाल वो नकेरा इसम है कि जो दलालत करता है फाइल की हालत पर या बर हैअत मफूल या मफूल की हालत पर या बर हैअत हर दो या दोनों की हालत पर, दोनों की हालत पर दलालत करता है। चूं रा की बैनी, जैसे कि रा की बैनी का लफ्ज है यह हाल बन रहा है और दोनों की हालत बयान कर रहा है, फाइल की भी और मफूल की भी। इस जुमले में दर लकीतु जैदन रा की बैनी, इस जुमले में लकीतु जैदन रा की बैनी, ये रा की बैनी हाल है किस से? जी दोनों से। लकीतू के अंदर जो ताजमीर फाइल की आ रही है उससे भी, और जैदन जो मफूल भी ही है उससे भी हाल है। तो लकीतू तरकीब करें, लकीतू फेल बा फाइल, इसके अंदर ताजमीर मरफू महलन फाइल है और जुलहाल है, और जैदन मनसूब लफजन मफूल भी ही है और जुलहाल। तो ये मनसूब क्यों है? मफूल भी ही है। और लफ्जन क्यों? इसके नसब पर हम तलफुज कर रहे हैं। आगे राकिबैनी, ये इसका इराब बोलो, मनसूब लफ्जन। रजुल की तस्निया क्या? रजुलानी। तस्निया का रफा किसके साथ आता है? अलिफ के साथ। और नसब और जर या माकबल मफतूह। और राकिब का माना है सवार, इसकी तस्निया बनाओ राकिबानी। तो इसका रफा किसके साथ? वही तस्निया है, तस्निया का रफा अलिफ के साथ आता है, और नसब और जर या माकबल मफतूह। और ये राकिबान हाल बनाना चाहता हूं तो राकिबान कहूंगा या राकिबैन कहूंगा? हाल क्या होता है? मनसूब होता है, मनसूब होता है, तो राकिबान कहना चाहिए या राकिबैन ही कहना चाहिए? तस्निया का नसब किसके साथ आता है? या माकबल मफतू, इसलिए यह राकिबैनी मनसूब है, इसलिए या के साथ आया। अगर यह मरफू होता तो किसके साथ होता? अलिफ के साथ, राकिबानी। तो राकिबैनी मनसूब है, और कौन सा मनसूब है? लफजन। लफजन क्यों? इसके नसब पर हम तलफुज कर रहे हैं। या पढ़ रहा हूं मैं कि नहीं पढ़ रहा? राकिबैनी। अगर रफा होता किसके साथ होता? अलिफ, तो राकिबानी। देखो वहां भी तलफुज है, तलफुज से पता चल रहा है अलिफ पढ़ रहे हैं तो ये मरफू है। और राकिबैनी, मैं नसब पढ़ रहा हूं, मैं या पढ़ रहा हूं, तो तलफुज से ही पता चल गया कि ये मनसूब है या मजरूर है। और यहां तो ये हाल बन रहा है, और हाल क्या होता है? मनसूब, तो इसलिए ये मनसूब है। तो राकिबैनी हाल है फाइल और मफूल दोनों से। तो फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर जुलहाल से, अच्छा जुलहाल भी बना ले। ताजमीर भी क्या है? जुलहाल। और जैदन भी क्या है? जुलहाल। तो ताजमीर जुलहाल अपने हाल से मिलकर फाइल बन गई, और जैदन जुलहाल अपने हाल से मिलकर मफूल भी ही बन गया, और फेल अपने फाइल और मफूल भी ही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। लकीतु जैदन राकिबैनी, मैंने जैद से मुलाकात की सवार होकर, या यूं कहें मैंने और जैद ने सवार होकर मुलाकात की। मैंने और जैद ने, यानी दोनों सवार थे। आगे देखिए, कहते हैं वफाइल और मफूल रा जुलहाल गोयंद, और फाइल और मफूल को जुलहाल कहते हैं, यानी जिसका भी हाल बयान किया जाए वो जुलहाल कहलाता है, चाहे फाइल हो चाहे मफूल हो चाहे दोनों हो। तो कहते हैं फाइल और मफूल राजुल हाल गोयंद, फाइल और मफूल को जुलहाल कहते हैं। वह आ गालिबन मारिफा बाशद, और वो गालिबन यानी अक्सर जो होता है मारिफा होता है। हाल तो हमेशा क्या होगा? नकेरा। हाल तो हमेशा क्या होगा? नकेरा। और जुलहाल गालिबन क्या होगा? मारिफा। हमेशा नहीं, लेकिन अक्सर जुलहाल मारिफा होता है। जैसे पहली मिसाल में जैदुन जुलहाल था, और नाम है मारिफा है, अलम है। دوسری مثال میں بھی زیدن علم ہے، معرفہ ہے. اور لقیت زیدن راکبین، اس میں تا ضمیر ہے وہ بھی معرفہ، اور زیدن جو علم ہے وہ بھی معرفہ، جو دونوں ذوالحال ہیں. تو حال ہمیشہ کیا ہوگا؟ نکرہ. اور ذوالحال اکثر کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. تو کہتے ہیں وَآ غالباً معرفہ باشد، اور وہ جو ذوالحال ہے وہ اکثر اوقات جو ہے وہ معرفہ ہوگا. وہ اگر نکرہ باشد حال را مقدم دارند. بھئی اگر حال جو ہے وہ نکرہ ہو، حال کیا ہو؟ ذوالحال اگر نکرہ ہو، توجہ ہے، اگر ذوالحال بھی، حال تو ہوتا ہی نکرہ ہے، اگر ذوالحال بھی نکرہ آ جائے تو پھر حال کو مقدم کرنا واجب ہے. ابھی تک جتنی مثالیں آپ نے پڑھی، پہلے حال آتا تھا یا ذوالحال؟ ذوالحال پہلے آتا تھا اور حال اس کے بعد. لیکن اگر ذوالحال نکرہ ہو تو پھر حال کو ذوالحال پر مقدم کرتے ہیں، پہلے حال لے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد ذوالحال لے آتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں جا رجل، ایک آدمی میرے پاس آیا اور میں بتانا چاہتا ہوں وہ سوار ہو کر آیا، تو میں راکبن کو حال بنانا چاہتا ہوں، تو راکبن بھی نکرہ، کیونکہ حال ہوتا ہی کیا ہے؟ نکرہ. اور رجلن جو ذوالحال ہے وہ بھی نکرہ، تو اب کیا کروں گا؟ حال کو مقدم کروں گا. اور کیسے کہوں گا؟ جا راکبن رجلن، جا راکبن رجلن. یہ راکبن کا نسب بتا رہا ہے کہ یہ حال ہے، اور رجل ان کا رفع بتلا رہا ہے یہ، ہاں یہ ذوالحال مرفوع ہوتا ہے، ہاں تو رجل ان کا رفع بتلا رہا ہے یہ فاعل ہے، یہ کیا ہے؟ فاعل ہے، اور یہی ذوالحال ہے، کیونکہ حال فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کیسے کہوں گا؟ جا راکبان رجل. بھائی کیوں یہ کیوں مقدم کرنا کیوں واجب ہے؟ وجہ یہ کہ حالت نسبی میں موصوف صفت کا شبہ ہو سکتا ہے. کس کا؟ موصوف صفت کا شبہ ہو سکتا ہے. جیسے رأیتُ رجلاً، رأیتُ رجلاً، رأیتُ فعل با فاعل، اور رجلاً، اور رجلاً مفعول بھی ہے نا، منصوب ہے، رجلاً کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. اور آگے میں حال بھی لانا چاہتا ہوں، تو اگر میں حال اس کے بعد لے آؤں راکبن، رأیتُ رجلاً راکبن، تو سننے والا سمجھے گا رجلاً ہے موصوف اور راکبن ہے اس کی صفت، کیونکہ موصوف صفت ان کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، رجلاً بھی منصوب اور راکبن جو حال آگے آ رہا تھا وہ بھی منصوب، اور دونوں نکرہ ہیں. یاد رکھو موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ، موصوف اگر نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ. تو رجلن موصوف ہے نکرہ، اور راکبن حال وہ بھی نکرہ، تو دونوں نکرہ ہیں، اور دونوں پر اعراب بھی نصب آ رہا ہے، موصوف صفت پر اعراب بھی ایک جیسا آتا ہے، تو طالب علم کیا سمجھے گا؟ یہ آپس میں کیا ہیں؟ موصوف صفت ہیں. حالانکہ بولنے والا، بتانے والا، وہ اس کو موصوف صفت نہیں بنا رہا بلکہ حال اور ذوالحال بنا رہا ہے. تو اگر میں رجلن راکبن کہوں تو رجلن موصوف اور راکبن صفت، لیکن اگر میں راکبن رجلن کہوں، رأیتُ راکبن رجلن، اب یہ راکبن یہ صفت تھی اور رجل پر مقدم ہے، اور صفت تو کبھی بھی رجل پر مقدم، صفت تو کبھی بھی موصوف پر مقدم نہیں ہو سکتی، معلوم ہوا یہ حال ہے. توجہ ہے جی. کیا بات ہوئی؟ کہ حال تو ہوتا ہی نکرہ ہے، ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے، لیکن اگر ذوالحال بھی کیا آ جائے؟ نکرہ. تو ذوالحال بھی نکرہ ہے اور آگے حال بھی نکرہ ہے، تو وہاں کیا شبہ پڑ سکتا ہے؟ موصوف صفت کا. لہذا ایسی صورت میں جب ذوالحال نکرہ آ جائے تو حال کو اس پر مقدم کرنا واجب ہے، یعنی لازم ہے، لازم ہے. تو کیسے کہیں گے؟ جا رجلن راکبن کہیں گے یا جا راکبن رجلن کہیں گے؟ جا جاء راکبان رجلن کہیں گے. چلیے بس کرتے ہیں, باقی تفصیل میں پھر اگلے سبق میں بیان کر دوں گا بھائی. حاصل کلام کیا آج انہوں نے آپ کو بتلایا کہ فاعل کسے کہتے ہیں, فاعل کسے کہتے ہیں, وہ اسم ہے جس سے پہلے کیا آئے فعل, اور اس فعل کا اس کی طرف اسناد ہو, اور کس طریقے پر اسناد ہو کہ فعل اس کے ساتھ قائم ہو, اس پر واقع نہ ہو. اس کے بعد انہوں نے مفعول مطلق کے بارے میں بتایا کہ وہ مصدر ہوتا ہے اور فعل کے بعد آتا ہے اور اسی فعل کے معنی میں ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے مفعول فی کے بارے میں بتایا کہ مفعول فی جو ہے وہ زمانے اور جگہ کا نام ہے جس کے اندر اس فعل کو کیا گیا ہو, اور اس کو ظرف بھی کہتے ہیں, اور اگر یہ زمانہ ہو تو اس کو ظرف زمان کہتے ہیں, اور اگر یہ جگہ ہو تو اس کو ظرف مکان کہتے ہیں, اور یہ منصوب ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے مفعول معہو کے بارے میں بتلایا کہ مفعول معہو جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور وہ واو بمانے معا کے بعد آتا ہے. اس کے بعد مفعول لہو کے بارے میں بتلایا کہ مفعول لہو وہ چیز ہے جو ماقبل کے فعل کی علت بیان کرے اور یہ مصدر ہوتا ہے, ضربتہ تادیبا. اور اس کے بعد انہوں نے حال کے بارے میں بتلایا کہ حال وہ ہے کہ جو فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے یا دونوں کی حالت بیان کرے, اور حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے, اور جس کی یہ حالت بیان کرے اس کو ذو الحال کہتے ہیں, چاہے وہ فاعل ہو چاہے مفعول ہو یا دونوں ہو. اور یہ جو ذو الحال ہوتا ہے یہ اکثر معرفہ ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھار ذو الحال بھی نکرہ آ جاتا ہے. تو ذو الحال بھی نکرہ ہو گیا اور حال بھی کیا ہے نکرہ, تو وہاں موصوف صفت کا شبہ پڑ سکتا ہے. لہذا جب ذو الحال نکرہ ہو تو حال کو اس پر مقدم کرنا لازم ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام. باقی تفصیل انشاءاللہ کل کے سبق میں آ جائے گی بھائی. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟